पृष्ठ संख्या 136। दाग केवल एक कवि ही न थे, बल्कि बड़े हसमुख, उदार प्रकृति तथा मानव प्रेमी भी थे। वह मित्रों के साथ नम्रता का व्यवहार करते, परंतु धन संपत्ति वालों के सम्मुख स्वाभिमानी बन जाते थे। इसी कारण से जब उर्दू कविता का रंग बदल रहा था, उस समय भी वह बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। उनके सहस्त्रों शिष्यों में अनेक तो ऐसे थे जो केवल पत्र व्यवहार करके अपनी कविताएं उनसे ठीक करा लिया करते थे। उनके प्रसिद्ध शिष्यों में डॉक्टर इकबाल, दक्कन के निजाम सायल जो उनके दामाद भी थे, वे खुद हसन, नूह नारवी, आगा शायर, सीमाब अकबराबादी बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनमें से अनेक की गणना उस्तादों में होती थी। दाग ने अपनी गजलों के चार संग्रह तैयार किए थे, जिनके नाम हैं गुलजारे दाग, आफताबे दाग, महताबे दाग, यादगारे दाग। इनके अतिरिक्त उनकी एक मशनवी फरियादे दाग और पत्रों का एक संग्रह इंशा ए दाग भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके काव्य संग्रहों में कसीदे और छोटी छोटी कविताओं को छोड़कर अधिकतर गजलें हैं, और वह गजल ही के एक बड़े कवि माने जाते हैं। दाग के पहले दो संग्रह गुलजारे दाग और आफसाबे दाग रामपुर ही में प्रकाशित हो चुके थे। इनमें जो गजलें हैं वह बड़ी रंगीन, मधुर और भावपूर्ण हैं। उनमें चुलबुलापन और छेड़छाड़, विनोद और हास्य रस फूट पड़ता है। उनके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि किसी निश्चिंत युवक ने जो जीवन के आमोद प्रमोद और विलास में डूबा है, अपने हार्दिक भावों का चित्रण बड़े स्पष्ट रूप से किया है। दिल्ली की बोलचाल की भाषा तथा मुहावरों का सुंदर प्रयोग और प्रेम भाव का खुला खुला वर्णन दाग से अधिक और किसी के यहाँ नहीं मिल सकता। दाग में गंभीरता नहीं है, वह अपनी मनोभावनाओं को छिपाना नहीं जानते। प्रेम और श्रृंगार के अतिरिक्त दूसरी भावनाओं का उल्लेख उनके यहाँ बहुत कम है। बाद की कविताओं में कहीं कहीं तसव्वुफ, नैतिक सिद्धांत और जीवन की अन्य समस्याओं पर भी कुछ विचार मिल जाते हैं, परंतु वहाँ दाग की अपनी शैली नहीं रह जाती। उनकी भावात्मक अभिव्यक्ति में भी गहराई नहीं है, और कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि वह केवल किसी वाक्य या मुहावरे के लिए शेर लिखते थे। उर्दू के आलोचकों ने दाग का मूल्यांकन पृष्ठ संख्या 137 करने में बहुत मतभेद किया है, परंतु सच यह है कि दाग जिस सामाजिक पतन और भ्रष्ट वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसमें दार्शनिक तत्व, गूढ़ ज्ञान और ऊंचे आदर्श के लिए स्थान ही नहीं था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने निराशावादिता के विरुद्ध एक प्रकार की आशावादिता का प्रचार किया, और जीवन को आत्मघात से बचाने के लिए मनोरंजन और ठटोल की ओर संकेत किया। उस निराशावादी युग में प्रेम की भावनाओं को आदर्शवादी होने से बचा लेना एक बड़ा काम था, और दाग जो वास्तविक जीवन में प्रेम के खेल खेल चुके थे, इसमें सफल हुए। वह उर्दू के उन लोकप्रिय कवियों में हैं जिनकी गजलें सभी प्रकार के लोग पढ़ते और आनंद उठाते हैं। उनकी लोकप्रियता का मर्म उनके सामान्य और साधारण विचारों को सरल, शुद्ध, मधुर और भावपूर्ण भाषा में प्रकट कर देने में है। कला की दृष्टि से यह बात प्रत्येक कवि को प्राप्त नहीं होती, और दाग चाहे कुछ भी ना हो और दाग चाहे कुछ भी ना हो, एक बड़े कलाकार अवश्य हैं। उदाहरण के लिए उनके कुछ शेर प्रस्तुत हैं। शबे वश्ल जिद में बसर हो गई, नहीं होते होते सहर हो गई, लगाते हैं दिल उससे अद हार जीत, इधर हो गई या उधर हो गई, बुरे हाल से या भले हाल से तुम्हें क्या, हमारी बसर हो गई, इधर आईना है उधर दिल है, जिसको चाहा उठा के देख लिया। बुत को बुत और खुदा को जो खुदा कहते हैं, हम भी देखें तो उसे देख के क्या कहते हैं, हमें तसव्वुर में भी जो बात जरा कहते हैं, सब में उड़ जाती है जालिम, इसे क्या कहते हैं। पहले तो दाग की तारीफ हुआ करती थी, अब खुदा जाने वो क्यों उनको बुरा कहते हैं। दाग का नाम सुन के वो बोले, आदमी का ये नाम होता है, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। पृष्ठ संख्या 138। पयामी कामयाब आए न आए, खुदा जाने जवाब आए न आए। शुमार अपनी खताओं का बता दूं, तुम्हें शायद हिसाब आए न आए। पीऊँगा आज शाकिर सिर होकर मयस्सर, फिर शराब आए न आए। इतनी ही तो कसर है तुम में, कहना नहीं मानते किसी का। लखनऊ के जनजीवन के अंग अंग में काव्य रस घुल चुका था। यद्यपि बड़े कवियों का जन्म लेना बंद हो चुका था, परंतु आतिश और नासिक के शिष्य और इन शिष्यों के शिष्यों ने काव्य में शब्दों को, बाहुल्य को प्रधानता दे रखी थी। इसमें से कभी कभी वास्तविक जीवन से संबंध रखने वाली रचनाएं भी उत्पन्न हो जाती थीं। बात यह थी कि अवध के नवाब और बादशाह उस भारतीय रंग में डूब चुके थे जहाँ एक सामान्य सभ्यता जन्म लेती है। यहाँ के हिंदू मुसलमान सभी बड़ी उत्सुकता से सांस्कृतिक जीवन के प्रदर्शन में भाग लेते थे। अगर मुसलमान होली और दिवाली मनाते थे, तो हिंदू मुहर्रम के त्यौहार में सच्चे दिल से भाग लेते थे। इसका एक बड़ा कारण यह मालूम होता है कि अवध के बादशाहों ने हिंदू मुसलमानों में कभी भेदभाव नहीं किया और ऊंचे से ऊंचे पद पर हिंदुओं को भी उसी प्रकार रखा जैसे मुसलमानों को। इसमें संदेह नहीं कि दोनों के धार्मिक जीवन में बड़ा अंतर था, परंतु रहन-सहन, रीति नीति और आहार व्यवहार में ऐसी समानता पैदा हो रही थी जो उन्हें एक परिवार के रूप में संगठित कर रही थी। कई कवियों और लेखकों ने रचनाएं की हैं। आसिफुद्दौला के होली खेलने पर हिंदू लेखकों ने मुसलमान धर्म और जीवन के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। राजा टिकैत राय, महाराजा झाऊलाल, राजा नवल राय, राजा खुशहाल राय, टीकाराम तसल्ली, मंगल सेन उल्फत, कुंवर सेन मुजतर, बख्शी भोलानाथ आदि यहाँ के जीवन पर उसी प्रकार छाए हुए थे जिस प्रकार कोई मुसलमान हो सकता था। यहाँ के जीवन का विस्तार में अध्ययन किया जाए तो उन स्रोतों का पता मिल सकेगा जिन्होंने यह स्थिति पैदा की थी। बादशाह स्वयं कला कौशल और साहित्य में इतनी दिलचस्पी लेते थे और विद्वानों का संरक्षण और आदर इस प्रेम से करते थे कि उन्हें बढ़ावा मिलता था, परंतु दुर्भाग्य से सारा जीवन भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद थे, इसलिए यह कवि और लेखक अंधेरे में अपनी कल्पनाओं के सहारे जी रहे थे। सआदत अली खां, गाजीउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर सब स्वयं कवि थे और उनके पृष्ठ संख्या 139। दरबारों में कवियों का सम्मान होता था। गाजीउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर के युग में विज्ञान की किताबों के अनुवाद भी हुए, नए छापे खाने खुले और विज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली गई जिसमें ज्योतिष और दूसरे विज्ञानों पर काम होता था। मुहम्मद अली शाह और अमजद अली शाह भी विद्वानों का सम्मान करते थे, परंतु उनको धर्म से विशेष प्रेम था, अतएव धार्मिक साहित्य को उनके युग में खूब प्रोत्साहन मिला। 1847 ईस्वी में वाजिद अली शाह 20 वर्ष की आयु में अवध के राज सिंहासन पर बैठे। उनके युग और उनके जीवन के बारे में बहुत सी भ्रम फैलाने वाली बातें मशहूर हो गई हैं जिन्हें इतिहास के विद्वानों ने मिथ्या घोषित किया है, किंतु यहाँ उनके उल्लेख का अवसर नहीं। परंतु इतना जानना आवश्यक है कि अवध के इस अंतिम बादशाह ने बहुत सी बाधाओं के होते हुए भी कला कौशल की उन्नति में भाग लिया। उस समय के संकट को देखते हुए इसे भोग विलास भी कहा जा सकता है, परंतु सच यह है कि वाजिद अली शाह को साहित्य और कला कौशल से हार्दिक प्रेम था। यहाँ तक कि मटिया बुर्ज में बंदी बना लिए जाने के बाद भी वह उनसे दिलचस्पी लेते रहे। वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर था। फारसी और उर्दू गद्य और पद्य में लगभग उन्होंने 100 पुस्तकों की रचनाएं की। इनके अतिरिक्त अवधी में दरारें और ठुमरियाँ भी लिखीं। उनके छह काव्य संग्रह, बहुत सी मसनवियाँ, मरसियों के कई संग्रह और कसीदे मिलते हैं। संगीत कला और सैनिक संगठन पर भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। वाजिद अली शाह अख्तर की काव्य रचना की कोई ऐसी विशेषता नहीं जो उनको उस समय के लखनऊ के साधारण रंग से अलग कर सके। यह बात अवश्य है कि उनकी गजलें और मसनवियाँ आप बीती का प्रतिबिंब होने के कारण बड़ी रोचक और प्रभावशाली हो गई हैं। उनके पत्रों और दूसरी रचनाओं के अध्ययन से कभी कभी उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता भी चल जाता है। अख्तर को बड़ा कवि नहीं कहा जा सकता, परंतु उनकी सभी रचनाओं का अध्ययन करने के बाद यह मानना पड़ता है कि उनमें एक कलाकार की आत्मा थी, जिसे अवकाश मिलता तो कोई महत्वपूर्ण कार्य भी कर सकती थी। लखनऊ की काव्य रचना का साधारण रूप वही था जो उससे कुछ दिन पहले रह चुका था। फिर भी कुछ कवियों ने उन परंपराओं को शक्ति प्रदान करके लोकप्रिय बनाया जो पतन की ओर बड़े वेग से अग्रसर थी। यहाँ के प्रसिद्ध कवियों में मुनीर शिकोहावादी थे, जो नासिक रश्क और दवीर के शिष्य थे और हर तरह की कविताएं बड़ी सुविधा से लिख सकते थे। 1857 ईस्वी के संघर्ष में जिसको गदर कहा जाता है, उनको भी बागी समझकर काले पानी की सजा दी गई, और जब एक लंबी सजा काट कर वह लौटे तो थोड़े दिनों के बाद 1881 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनके विचार जो कुछ भी रहे हों, परंतु उनकी काव्य रचना परिपाटी और पृष्ठ संख्या 140 रीति में इस प्रकार घिरी हुई थी कि उसमें उनके प्रगतिशील विचारों का पता नहीं चलता। उस समय के दूसरे कवियों की भांति वह भी शब्दों, मुहावरों, अलंकारों के चक्कर में फंसे हुए थे। कविताओं के तीन संग्रहों के अतिरिक्त एक मसनवी मिराजुल मजामीन भी लिखी है, जिसमें धार्मिक नेताओं के चमत्कारों का उल्लेख बड़ी सुंदरता से किया है। एक स्थान पर बनारस की सुबह का ऐसा सुंदर चित्र खींचा है जो उर्दू काव्य में सदैव अपना स्थान बनाए रखेगा। उनकी गजलों में कुछ शेर यह हैं: गई चोर की तरह छिप कर जवानी, दगा दे के घर से ये मेहमान निकला। वो बेखबर है शर्म से, हम पायमाल हैं, हैरत है काम आएगी नीची निगाह कब। गुर्बत में किसके चश्मे करम की उम्मीद हो, आंखें चुरा रहा है जमाना गरीब से। सबको इबरत हो गई मेरी मुसीबत देख कर, हमसे ऐ बुत तू फिरा, तुझसे खुदाई फिर गई। कि तर्क मैंने शेख हो वराह मन की पैरवी, दैरो हरम में मुझको तेरा नाम ले गया। लखनऊ के इस युग में एक ऐसी कविता भी मसनवी के रूप में लिखी गई जो सदैव मानव हृदय को प्रभावित करती रहेगी। हकीम तसद्दुक हुसैन, जो नवाब मिर्जा के नाम से संबोधित किए जाते थे और कविताओं में अपना उपनाम शौक लिखते थे, लखनऊ के एक अच्छे कवि गिने जाते थे। उन्होंने गजलें भी लिखी हैं, लेकिन गजलों से अधिक वह अपनी मसनवियों के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेषकर उनकी मसनवी जहर इश्क सहस्त्रों बार प्रकाशित होकर लोगों को तड़पा चुकी है। शौक आतिश के शिष्य थे, परंतु जहर इश्क उस युग के साधारण रंग से बिल्कुल अलग है। इसमें प्रेम की एक सच्ची कहानी बड़े सुंदर, रोचक, सरल और भावुक ढंग से कही गई है। प्रेम की जिन भावनाओं का चित्रण इस मसनवी में किया गया है, वह सदाबहार है। इसकी वास्तविकता और सादगी दो ऐसे गुण हैं जो उस समय की और कविताओं में इस मात्रा में नहीं पाए जाते। इसमें वह वातावरण भी है जो एक विलासयुक्त और पतनशील समाज में प्रकट होता है, जो एक विलासयुक्त और पतनशील समाज में प्रकट होता है, और वह सच्चाई भी है जो अमर है। कुछ आलोचकों ने इसे अश्लील भी बताया है, लेकिन उनकी भूल ही है, क्योंकि ऐसा कहना अश्लीलता और वास्तविकता के अंतर को भुला देना ही है। यह कृति पृष्ठ संख्या 141 उर्दू की उन जीवित रहने वाली पुस्तकों में है जो अपने साहित्यिक सौंदर्य के कारण सदैव आकर्षित करती रहेंगी। यह एक सुयोजित कहानी है। उदाहरण के लिए कुछ शेर लेने से इसकी विशेषताओं का अनुभव नहीं किया जा सकेगा। इस समय लखनऊ में सैकड़ों छोटे बड़े कवि मौजूद थे। एक विस्तृत इतिहास में उनमें से बहुत से जगह पाएंगे, परंतु यहाँ दो चार का ही उल्लेख हो सकता है: असीर, अमानत, खलक, यकी, काजी, अख्तर, तसस्सुक, रशीद, अमीर और जलाल इत्यादि अपने अपने स्थान पर बड़ा महत्व रखते हैं। यहाँ केवल अमीर जलाल और अमानत के बारे में कुछ बातें लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। मुंशी अमीर अहमद अमीर मीनाई 1828 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए और वहीं शिक्षा प्राप्त की। उस समय जो उच्च कोटि की शिक्षाएं प्रचलित थी उन सब में अमीर निपुण थे। यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों और धार्मिक नेताओं से उनका संबंध था। वह बालपन ही से कविताएं लिखते थे और यहाँ के प्रसिद्ध कवि आसीर के शिष्य थे। आसीर ही के द्वारा लखनऊ के दरबार तक पहुँच हुई, परंतु यह वाजिद अली शाह का अंतिम युग था और अभी 4 वर्ष भी बीतने ना पाए थे कि गदर हो जाने के कारण दरबार से उनका संबंध टूट गया। उन्होंने 2 ग्रंथ बादशाह के कहने पर लिखे थे, इससे उनका नाम दूर दूर फैला और उनको पुरस्कार इत्यादि भी प्राप्त हुए। कुछ दिन बेकार रहने के बाद उन्होंने रामपुर की राह ली, जहाँ के नवाब यूसुफ अली खां लखनऊ और दिल्ली के कवियों के अंतिम आश्रयदाता बने हुए थे। रामपुर में अमीर मीनाई का समय बड़ी शांति और सुख से बीता। नवाब ने उनको अपना उस्ताद भी बना लिया। एक विद्वान लेखक, कवि और महान व्यक्ति होने के नाते छोटे बड़े सभी उनका आदर करते थे। इस प्रकार 43 वर्ष उन्होंने रामपुर में बिताए। सन 1900 ईस्वी में निजाम हैदराबाद ने दाग के कहने पर इनको अपने दरबार में बुला लिया। अमीर मीनाई वहाँ गए तो जरूर, लेकिन कुछ महीने भी ना बीते थे कि हैदराबाद में उनकी मृत्यु हो गई। अमीर मीनाई के व्यक्तित्व को सभ्यता, गंभीरता और परोपकार की मूर्ति कहा जा सकता है। सच्चाई और सहानुभूति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वह कभी किसी की निंदा ना करते थे। विद्या, शिक्षा, अन्य गुणों के साथ उनमें इतनी नम्रता थी कि नवाब से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों तक सभी उनके पास बैठकर आनंद प्राप्त करते थे। अनेक लोगों के साहित्यिक प्रश्नों का उत्तर बड़ी प्रसन्नता से देते थे और कट्टरपंथी हुए बिना अपने धर्म का पालन सच्चे हृदय से करते थे। उनके शिष्य सैकड़ों से ज़्यादा बताए जाते हैं, लेकिन इनमें रामपुर के नवाब के अतिरिक्त रियाज, जलील, वसीम, मोहसिन, सफदर, दिल, मुजतर, हफीज, आह, अतखर और कमर इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इनमें से कोई तो स्वयं बहुत बड़े पृष्ठ संख्या 142 कवियों में गिने जाते हैं। अमीर मीनाई के पुत्रों ने भी काव्य रचना की और उनके परिवार के लोग अब तक उर्दू साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। अमीर मीनाई ने गद्य और पद्य दोनों में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। कहा जाता है कि उनकी कुछ रचनाएं गदर में और कुछ घर में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गईं। फिर भी जो मौजूद हैं उनकी संख्या 20 के ऊपर पहुंचती है। सबसे अधिक ख्याति प्राप्त तो इनकी गजलों के 2 संग्रह हैं, जिनके नाम मिरातुल गैब और सनम खाना ए इश्क है। एक तीसरा संग्रह भी है जो अब तक प्रकाशित नहीं हो सका। उन्होंने बहुत सी धार्मिक कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें अधिकतर इस्लामी पैगंबर के अभिनंदन में हैं। प्रेम रस से भरी हुई कई मसनवियाँ और अन्य कविताएं भी हैं। गद्य में इंतखावे यादगार कवियों का एक तज़किरा है, जिसमें रामपुर के दरबार से संबंध रखने वाले कवियों और लेखकों की जीवन कथा और रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति वह प्रसिद्ध शब्दकोश है, जिनके केवल 2 भाग अमीरुल लुगात के नाम से प्रकाशित हुए थे। अमीर मीनाई ने यह शब्दकोश बड़े विस्तृत ढंग से लिखने की योजना बनाई थी। प्रकाशित भागों में केवल पहले अक्षर अलिफ से प्रारंभ होने वाले शब्द दिए गए हैं। सच यह है कि अमीर मीनाई के ज्ञान का अनुमान उनकी कविताओं से नहीं, वरन इस शब्दकोश से लगाया जा सकता है। उनके कई शिष्यों ने उनका जीवन चरित्र लिखा है, जिससे उनके बारे में बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, वह एक बड़े विद्वान और रोचक स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन काव्य संसार में उनका नाम केवल उनकी गजलों के कारण जीवित है। अपने जीवन का बड़ा भाग रामपुर में व्यतीत करने पर भी अमीर मीनाई लखनऊ के कवियों में गिने जाते हैं, और उसी दृष्टि से दाग से जो दिल्ली के कवि थे उनकी तुलना की जाती है। अब तक लखनऊ के शायरों और शायरी की जो चर्चा की जा चुकी है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि लखनऊ की शायरी से तात्पर्य किन विशेषताओं की ओर संकेत करना होता है। इसलिए यहाँ उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं, फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि धीरे धीरे लखनऊ और दिल्ली की शैलियों का अंतर मिट रहा था और रामपुर में दोनों केंद्रों के कवि एकत्र होकर एक नई शैली को जन्म दे रहे थे जो अपनी अनुभूत दृष्टि से लखनऊ के निकट थी। अमीर मीनाई की गजलों का पहला दीवान मीरातुल गैब लखनऊ के बिगड़े हुए रंग का नमूना है। इसमें वास्तविक भावनाओं के स्थान पर बनावटी अनुभूतियां और अलंकारों की भरमार है, लेकिन दूसरे संग्रह सनम खाना इश्क में उनकी कविता नई दिशाओं में प्रवेश करती है। इसमें मधुर, सरल और सुंदर गजलें बड़ी संख्या में मिलती हैं। साधारण भावुकता भी गंभीर हो गई है और अलंकारों के प्रयोग में पिछली सी बनावट नहीं है। कहा जाता है कि यह दूसरा संग्रह दाग की रचना शैली से प्रभावित होकर संकलित किया गया था। अमीर मीनाई की कविता में पृष्ठ संख्या 143 कहीं कहीं तसव्वुफ भी मिलता है। नैतिक उपदेशों को भी उन्होंने अपने विचारों में जगह दी है, परंतु प्रेम रस में डूबी हुई गजलों में जो मजा और आनंद मिलता है वह उनकी दूसरी कविताओं में नहीं मिलता। विद्वान होने के कारण वह भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और शब्दों के शुद्ध प्रयोग में निपुण थे, और जिस प्रकार दाग को दिल्ली की भाषा के लिए अधिकारी माना जाता है, उसी प्रकार अमीर मीनाई को लखनऊ के लिए। उस समय की समस्त काव्य रचनाएं दार्शनिक गंभीरता से वंचित थीं, तो अमीर मीनाई के यहाँ किसी प्रकार की गहराई कैसे पैदा हो सकती थी, जबकि वह लखनऊ, रामपुर और हैदराबाद के दरबारी वातावरण से कभी बाहर ना निकल सके। उन्होंने अपने पत्रों में भी, जिनका संग्रह प्रकाशित हो चुका है, अपने विचार प्रकट किए हैं और काव्य रचना के बारे में अपने आदर्शों को स्पष्ट किया है। उनसे यही प्रतीत होता है कि वह परंपरागत रीति गति से बाहर कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। उनके कुछ शेर उदाहरण के लिए यहाँ दिए जाते हैं। आई सहर इधर की उधर शाम हो गई, दो दो घड़ी को होने लगे दिन विशाल के, उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पर प्यार आता है। मैं जाग रहा हूँ हिज्र की शब, पर मेरा नसीब सो रहा है। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। लचक है शाखों में जुम्बिश हवा से, फूलों में बहार झूल रही है खुशी से झूलों में। क्या कहें इश्क में क्या मिलता है, बुत के मिलने से खुदा मिलता है। जो निगाह की थी जालिम फिर तो आंख क्यों चुराई, वही तीर क्यों न मारा जो जिगर के पार होता। हम चले दैर से काबे को, तो वो बुत बोला जाके ले लीजिए काबे में खुदा रखा है।